आइए हमारे साथ चलिए अंतरिक्ष की गहराइयों में। आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी पॉडकास्ट लिटिल बिग विज्ञान। साल 2020, 22, 24, 26 इत्यादि जुलाई के अंत तथा अगस्त के शुरुआत में आधी रात को दक्षिण दिशा में खड़े होकर अगर आप 35 डिग्री ऊपर देखें तो आपको एक लाल बिंदु सितारे की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। वो है मंगल ग्रह, अंग्रेजी में मार्स। सदियों से मानव कौतूहल का विषय
और इसी कौतूहल में पृथ्वी से मंगल ग्रह पर कई स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं। इसी में एक नया नाम जुड़ने वाला है, यूएई का मार्स मिशन होप, जिसे वहाँ की अरबिक भाषा में अल अमाल भी नाम दिया गया है। हेलो, मैं हूँ रोशन।
मैं हूँ पंकज और हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड का टॉपिक है यूएई मार्स मिशन, व्हाट, व्हाई एंड हाउ।
हम इस प्रोग्राम को तीन भागों में आपको बताएंगे, क्या, क्यों और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, क्या, आखिर क्या है ये EMM, एमिरेट्स मार्स मिशन।
एक ऐसा मिशन जो यूएई को उन गिने चुने देशों की सूची में खड़ा कर देगा जिनका मार्स पर अब तक कोई ना कोई मिशन हुआ है। एक ऐसा मिशन जो केवल यूएई का नहीं, केवल अरब वर्ल्ड का ही नहीं, वरन पूरे इस्लामिक देशों में सबसे पहला मार्स मिशन है। मोहम्मद बिन राशिद स्पेस एजेंसी का ये अगर मिशन कामयाब होता है तो ये मार्स पर जाने वाला दुनिया का पांचवा स्पेस एजेंसी बन जाएगा, अगर चाइना इससे पहले पहुंच ना पाया तो। क्योंकि अभी आपको पता होगा यूएई के इस मार्स मिशन के लॉन्च के 2-3 दिन बाद ही चाइना का भी एक और स्पेस मिशन लॉन्च हुआ है, देखते हैं। वैसे यूएई के इस मिशन को जापान के रॉकेट से लॉन्च किया गया है।
इस होप प्रोब का शेप और स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट और क्यूबिक है। इसका टोटल वजन 1350 किलोग्राम है, जिसमें उसका फ्यूल भी इंक्लूडेड है। इस प्रोब की चौड़ाई है 7 फीट 9 इंच यानी कि 2.37 मीटर और उसकी लंबाई है 9 फीट 6 इंचेस यानी 2.9 मीटर।
अब आपको यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा, एक सेकंड। आपने कहा कॉम्पैक्ट और क्यूबिक, पर मैं हूँ मोटी दिमाग का आदमी, मुझे हिंदी में समझाइए।
मतलब कि एक घनाकार आकृति का है। कॉम्पैक्ट मतलब कि एकदम सॉलिड और क्यूबिक यानी कि एक घनाकार घन जैसे आकार का एक शेप दिया गया है इसको, स्ट्रक्चर जैसे एक पासा होता है ना, पासा, जस्ट लाइक अ पासा, डाइस, डाइस के जैसा,
वो लूडो वाला जो होता है,
लूडो वाला पासा, सेम, सही पकड़ा।
ठीक है, आगे बढ़िए, रोक दी आपको बीच में ही।
अब इसकी ओवरऑल साइज की बात करें तो ये एक छोटी कार जैसा दिखता है।
इतना बड़ा?
हाँ बिल्कुल। इस होप मिशन में 900 वाट के दो सोलर पैनल भी लगे हुए हैं जिससे कि बैटरियों को चार्ज किया जा सके, और इसके लिए एक एंटीना भी लगाया गया है जो कि 1.5 मीटर का है और ये कम्युनिकेट करने के काम आएगा।
हाँ, एंटीना और किसी और चीज के काम तो नहीं आता है ना।
बिल्कुल नहीं।
बढ़ते अपने अगले सेक्शन की तरफ, क्यों, आखिर ये मिशन हो क्यों रहा है।
सबसे पहले बात करी जाए इस मिशन की तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने जुलाई 2014 में इस मिशन को अनाउंस किया था। इस मिशन का मेन मकसद ये है कि इमिराती इंजीनियर्स जो भी है उनकी क्षमताओं में और इजाफा करें, उनको और भी पोटेंशियल ज्यादा से ज्यादा बनाएं और ह्यूमन नॉलेज को भी बढ़ाएं। ताकि मार्सनी एटमॉस्फेयर, जो मार्स मंगल ग्रह का वातावरण है, उसको और भी अच्छे से जान पाए हम लोग। तो इस मिशन के सबसे प्रमुख उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। ये है मार्सन क्लाइमेट का क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर लेना, यानी कि ये होप्रो मंगल ग्रह की सतह पे जाएगा और वहां के एक सबसे अच्छी वाली क्वालिटी वाली पिक्चर्स लेगा।
कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या?
कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत, काफी बड़े लेवल पे चारों तरफ से वो अच्छी पिक्चर्स लेगा, जिससे कि वैज्ञानिकों को हमारी धरती के पास्ट और फ्यूचर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और मंगल ग्रह पे या और भी दूसरे ग्रहों पे मानव जीवन की क्या संभावनाएं हैं, इसका भी पता लगाया जा सके।
एक सेकंड, आपने कहा कि फोटो लेने से पास्ट और फ्यूचर का पता चल जाएगा, ठीक?
हाँ बिल्कुल
सही है। मैं अपना एक आपको फोटो लेके भेजता हूँ, आप मेरा पास्ट और फ्यूचर बताइए जरा।
ये तो ह्यूमन नेचर अलग है, बट ये जानना है प्राकृतिक नेचर कैसा है उसका पता लगाने के लिए हम लोगों ने इस मार्स मिशन को भेजा है।
हमने ऊपर बात किया था कि जापान ने इसको लॉन्च किया है। जापान ने क्यों किया?
क्योंकि यूए के पास अपना खुद का रॉकेट है ही नहीं, इसलिए यूए गया जापान के पास, उनके पास आधुनिक तकनीक अवेलेबल है।
अब तैयार हो जाते हैं जरा कुछ अंग्रेजी नामों के लिए। ये जो होप प्रोब है, इसमें तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पहला है एमिरेट्स मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा है एमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर, तीसरा है एमिरेट्स मार्स अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। ये बताइए कि ये तीनों उपकरण ही क्यों लगाए गए?
देखिए, इसमें तीनों उपकरण अलग अलग काम करने के लिए भेजे जा रहे हैं, तीनों काफी, और इन तीनों का अलग अलग काम है। अलग अलग तरीके से ये मार्स की सतह पर फोटोग्राफी करेंगे, वहां के अलग अलग तरीके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और उसके साथ ही सारा डाटा पृथ्वी पे भेजेंगे, जिससे कि हमारे साइंटिस्ट उन चीजों को एनालाइज कर सके। और इसमें बात करते हैं EMIRS की, यानी इमिरेट्स मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर की। यह इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर मार्स की सतह पे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डस्ट, आइस क्लाउड्स, वाटर वेपर्स और टेम्परेचर प्रोफाइल्स को मेजर करता है। उसके बाद क्या करता है ये कि लोअर एटमॉस्फेयर और अपर एटमॉस्फेयर दोनों के बीच के लिंकेज को, और फिर EMUS यानी कि इमिरेट्स मार्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर और इमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर के बीच कंजंक्शन का काम करता है।
समझ में नहीं आया?
नहीं समझ आया
ना,
अच्छे से बताता हूँ। EMIRS इंस्ट्रूमेंट एक इंटरफेरोमेट्रिक थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर है, जो करंट मार्सन क्लाइमेट के एनर्जी बैलेंस के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया गया है। मतलब कि ये वहां पे एनर्जी बैलेंस किस तरह का है, उस चीज को ये अच्छे से स्टडी करके हमें बताएगा। एनर्जी बैलेंस को समझने से वैश्विक तौर पर एनर्जी के सोर्सेज और उसके लापता होने के कारणों का भी पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही मंगल ग्रह का निचला वातावरण सूर्य के साथ डेली और सीजनली क्या प्रतिक्रिया देता है, इसे भी समझा जा सकता है। EMIRS इंस्ट्रूमेंट में एक रोटेटिंग मिरर लगाया गया है, जो कि मार्स की स्कैनिंग करेगा। अब बात करते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट EXIP यानी इमेरिट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर। ये मार्स का हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को कैप्चर करता है, यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वालिटी की पिक्चर्स लेता है मंगल ग्रह की। वहां पे पानी और बर्फ की गहराई कितनी है, इन सब चीजों को भी मेजर करता है, यानी कि कितना मीटर गहराई तक उस क्लाइमेट में पानी मिल रहा है, उस चीज को भी ये पता करेगा। वहां पे ओजोन की कितनी मात्रा अवेलेबल है, इस चीज को भी ये मेजर करेगा। और उसके बाद जो भी विजिबल इमेजेस हैं, यानी कि हमारे ह्यूमन आईज के द्वारा देखा जा सके उस तरह की इमेजेस को भी ये कैप्चर करेगा। इसमें EXI में रेडिएशन टॉलरेंट कैमरा लगा हुआ है, जिससे कि इस कैमरे को रेडिएशन से कोई खतरा नहीं होगा। EXI 12 मेगापिक्सल तक के पिक्चर्स लेने में सक्षम है। इमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर को लेबोरेटरी फॉर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स और मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर दोनों ने मिलकर डेवलप किया है। यानी कि अगर बात करें तो एक सेकंड में 180 फोटोज ये खींच सकता है। तो बात करते हैं इमिरेट्स मार्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर की। ये स्पेक्ट्रोमीटर अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है और वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा अवेलेबल है इस चीज को भी पता करता है।
हमने देखा है कि आजकल के इसी जुलाई के महीने में ही काफी सारे मार्स मिशन, मतलब तीन तो सामने दिखी गए। एक यूएई का होप मिशन है, चाइना का एक मिशन है और एक अमेरिका का प्रिजर्व है जो 30 को लॉन्च होने वाला है 30 जुलाई को। तो ये इसी डेट के आसपास ऐसा क्यों हो रहा है? और काफ़ी, मतलब समझिए कि पिछले एक दो साल से कुछ मार्स पे मिशन नहीं गए और अचानक से तीन तीन जा रहे हैं, क्यों?
इस पैटर्न के पीछे काफी अच्छा कारण छुपा हुआ है। क्या होता है, जब धरती और मंगल ग्रह के बीच की दूरी जब सबसे कम होती है तभी किसी मिशन को लॉन्च किया जाता है। इसके वजह यह है कि कम फ्यूल में ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा एनर्जी, इन सब चीजों की जरूरत कम होती है। तो ऐसा होता है कि हर 24 या 26 महीने के आसपास मार्स धरती के काफी करीब आ जाता है। इस सिचुएशन में होता है कि धरती और मार्स के बीच की दूरी सबसे कम होती है। उस समय अगर कोई भी मिशन लॉन्च किया जाता है तो कम समय में वो वहां पे पहुंच जाएगा, ना तो ज्यादा एनर्जी की खपत होगी और ना ही ज्यादा समय लगेगा, दूरी भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी और हमारे वैज्ञानिकों को ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा।
अच्छा, ठीक है। तो अगले सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि ये जो होप प्रोब है ये मार्स तक पहुंचेगा कैसे और पहुंचने के बाद मार्स के ऑर्बिट में घुसेगा कैसे। इस कैसे सेगमेंट में ये जो होप प्रोब है ये 20 जुलाई को लॉन्च हो चुका है। जैसे ही ये अंतरिक्ष में पहुंचता है और अपने अपर स्टेज से अलग होता है तो इसमें लगा कंप्यूटर शुरू होता है और हीटर को ऑन करता है जिससे कि फ्यूल जम ना जाए। सोलर पैनल खुलते हैं और सन सेंसर से सूरज को खोज के और अपना दिशा बना लेते हैं और तुरंत ही ये प्रोब नासा के डीप स्पेस नेटवर्क जो कि मैड्रिड स्पेन में है वहाँ पे सिग्नल भेजना शुरू कर देता है और थ्रस्टर्स की मदद से इसे इसकी सही दिशा में लाते हैं। फिर इसके बाद इसका अगला फेज आता है क्रूज फेज। क्रूज फेज में होता यह है कि जो भी थ्रस्टर्स हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा चला के फिर बंद करके फिर चला के बंद करके एकदम ट्रैजेक्टरी को रिफाइन कर दिया जाता है कि हाँ एकदम इसी दिशा में जाना है। इसी टाइम इसके सारे इक्विपमेंट्स भी टेस्ट कर लिए जाते हैं कि ये सही से चल रहे हैं कि नहीं। 7 महीने बीत चुके हैं, होप प्रोब मार्स के पास पहुंच चुका है और लगभग 121,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अगर ये इस रफ्तार से चलता रहा तो ये मार्स के ऑर्बिट में नहीं घुसेगा बल्कि सीधे निकल जाएगा, इसलिए इसकी रफ्तार कम करनी होगी और डेल्टा 5 थ्रस्टर्स को शुरू किया जाता है और इसके रफ्तार को 30 मिनट में 121,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 18,000 किलोमीटर प्रति घंटा किया जाता है। मार्स की ग्रेविटी ने अब इस स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लिया है और ये स्पेसक्राफ्ट घूम के मार्स के दूसरी तरफ चला गया। अब हमें इंतजार करना होगा स्पेसक्राफ्ट के दूसरी तरफ से बाहर निकलने तक का और तभी हमें ये पता चलेगा कि ये मार्स ऑर्बिट इंसर्शन सफल हुआ है कि नहीं। ऑर्बिट में घुस जाने के बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट काफी अजीब रफ्तार से चक्कर लगा रहा होगा, कभी इसकी दूरी मार्स के सतह से 1,000 किलोमीटर तक आ जाएगी और कभी इसकी दूरी 49,000 किलोमीटर तक चली जाएगी। इस अंतर को कम करने के लिए 6 सप्ताह के अंतराल में कैप्चर ऑर्बिट से साइंस ऑर्बिट की तरफ ट्रांजिशन करना होगा और तब इसका ऑर्बिट 20,000 किलोमीटर से 43,000 किलोमीटर तक रह जाएगा, जिसमें कि हर एक कंप्लीट ऑर्बिट 55 घंटे लेगी और हर सप्ताह 2 बार 6 से 8 घंटे तक के लिए पृथ्वी से इसका संपर्क बना रह सकता है और उस दौरान ये लगभग 1 टेराबाइट तक का डाटा धरती पर ट्रांसफर करेगा। तो ये था यूएई का मार्स मिशन।
चलिए आज की बातचीत यहीं खत्म होती है। अगली बार फिर आइएगा, हम आपको लेकर चलेंगे अंतरिक्ष की गहराइयों में।